ओम शांति, गुड मॉर्निंग. सभी गुड मॉर्निंग कहेंगे? ओके, ओम शांति कहेंगे? वैसे आजकल ऐसा होता है कि इतनी लाइफ फास्ट हो गई है कि काफ़ी कंपनीज में इंस्टेड ऑफ टेलिंग गुड मॉर्निंग, वो ऑफिस में आते हैं, कहते हैं हेलो मॉर्निंग, हाउ आर यू, राइट? अरे बाबा, आई नो इट्स मॉर्निंग, यू नीड टू विश मी गुड मॉर्निंग, राइट? काफ़ी बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, जब वो कॉलेज में जाते हैं, एक पर्टिकुलर वोकैबुलरी होती है, हाय हाउ आर यू. अब हाय शब्द पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाय मेरा भाग्य फूट गया, हाय मेरी किस्मत, हाय भगवान, है ना? दिन की शुरुआत ही हाय हाय से करते हूँ. वंडरफुल वोकैबुलरी होती है. काफ़ी बच्चों को मैंने सुना है, स्टेशन में खड़े होते हैं, बस स्टैंड में खड़े होते हैं, और उनकी वोकैबुलरी बहुत वंडरफुल होती है. कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स हैंग आउट देयर. हैंग आउट देयर, क्या मैं बंदर हूँ टू हैंग आउट देयर, है ना? लेकिन वोकैबुलरी भी बहुत वंडरफुल है. चलिए, आज का सेशन है द 3Q कंसेप्ट. And I welcome all of you to this wonderful session organized by Prajapita Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya. Friends, April 15th, 1912, in the icy cold waters of the North Atlantic, a British ocean liner ship apne safar par aage badh raha tha. Ye ship ki visheshta ye thi ki isko kaha gaya tha the world's first largest non-sinkable ship. I repeat, the world's first largest non-sinkable ship. Is ship ka naam kya tha? Titanic. How many of you have seen the film Titanic? Very good, majority, good. The owners aur jo engineers jinhone ye ship ko banaya tha, wo itne confident the ki ye Titanic kabhi bhi doob nahi sakti hai because of its double hull construction. Aap sabhi ko malum hoga hull kya hota hai? Ship ki jo nichli star hota na, usko hull kehte hain. तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि किसी भी हालत में ये टाइटैनिक का एक्सीडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर टाइटैनिक किसी आइसबर्ग के साथ टकराता है और अगर आउटर हल टूट भी जाता है तो भी शिप नहीं डूबेगी, क्योंकि उसका इनर हल इंटैक्ट होगा. इतने वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि दे डिड नॉट प्रिपेयर देमसेल्स फॉर द इनएविटेबल. वो एक ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं हुए थे. एंड दिस इज वॉट प्रिसाइसली हैपेंड ऑन April 15th, 1912. What exactly happened? जब टाइटैनिक आइसबर्ग को पियर्स किया, वो आउटर हल को सिर्फ नहीं तोड़ा, इनर हल को भी पियर्स कर दिया. और 1500 से ज्यादा जो मेन, विमेन, चिल्ड्रन एंड क्रू मेंबर्स जो इस ट्रेजेडी में डेथ को पाए, आप बता सकते कितने लोग एक्चुअली मारे गए बिकॉज ऑफ द आइसबर्ग पियर्सिंग द टाइटैनिक? इतने में से कितने लोग की डेथ इस प्रकार हुई? Very few, very few. Majority of them died because Titanic did not have any provisions for a lifeboat. उनके उस इतने बड़े ship में उन्होंने lifeboats नहीं रखा था. इसलिए कहते हैं, okay? So we are this particular three things we are understanding: IQ, EQ, SQ, intelligence quotient, emotional quotient, and spiritual quotient. अच्छा, बड़ा बहुत ध्यान से इसको देखना, आप पता लगा सकते हैं कि इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है. क्या मिस्टेक है? शायद ठीक से दिख नहीं रहा ऊपर. देयर इज वन मिस्टेक हियर, कैन यू पॉइंट इट आउट? हाँ, या कैन आई, या आई का मिस्टेक है. वेयर इज द मिस्टेक? द प्रॉब्लम विद द आई. इंटेलिजेंस जो स्पेलिंग है ना, INTELLEGENCE लिखा है, एक आई का प्रॉब्लम है यहां पर, तीन एल दे दिया हुआ है, राइट? ओके, स्विच ऑफ द लाइट, या स्विच ऑफ द लाइट. ओके, हां, तो टाइटैनिक में जो हम बता रहे थे, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज फ्रेंड्स, द विल टू विन इज इंपॉर्टेंट, बट द विल टू विन इज नॉट वर्थ अ पेनी इफ यू डोंट हैव द विल टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स. यस, हम जीतना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को प्रिपेयर करें. प्रश्न उठता है, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर अ लेंथी वॉयज वी हैव एम्बार्क्ड अपॉन द जर्नी वी कॉल लाइफ? हमने इसके लिए लाइफ बोट तैयार किया है? यह प्रश्न उठ रहा है, जो आज के लेक्चर में हम अंडरस्टैंड जरूर करेंगे. क्यों प्रिपेयर करना जरूरी है? आप पढ़िए उसको. Life is like a taxi. The meter just keeps ticking whether we are getting somewhere or just standing still. Life jo ek taxi ki tarah hai, wo bas उसकी मीटर जो है बढ़ती जाएगी भले हम खड़े हैं या चल रहे हैं. देयरफॉर दे से लाइफ इज अ टैक्सी. लाइफ और क्या हो सकता है, एनी गेस? क्योंकि हम सभी ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हैं. एक हमने कहा टैक्सी है, और कुछ हो सकता है? लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल. लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल, वी फॉल ओनली इफ वी स्टॉप पेडलिंग. लाइफ जो है एक बाइसाइकिल की तरह है, हम कब गिरते हैं? जब हम उसको पेडलिंग करना स्टॉप करते हैं. और सोचने की बात है कि वर्षों से मनुष्य पेडल कर रहा है. क्यों पेडल कर रहा है? जीवन में सच्चा सुख और शांति के लिए. राइट फ्रॉम एजेस ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन पेडलिंग. और इसके लिए मनुष्य यूज करता है अपने इंटेलिजेंस का. यस, द फर्स्ट थिंग बुद्धि यूज कर रहा है. IQ stands for intelligence quotient. Now, what is intelligence quotient? It's an individual's ability to understand complex ideas. जो complex ideas होते हैं ना, उसको समझने की जो शक्ति है, उसको intelligence quotient कहा जाता है. To overcome obstacles by careful thought, है ना? जो भी विघ्न आते हैं, उसको हमें कैसे overcome करना है, वो IQ हमें सिखाता है. To engage in various forms of reasoning. कुछ भी बातें होती ना, तो logical reasoning जो करते हैं, it is because of IQ. In 1904, Binet and Simon developed the IQ test. है ना? 1904 में उन्होंने एक टेस्ट बनाया जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के, किसी भी विद्यार्थी के IQ टेस्ट को डेवलप कर सकते हैं. और हमारा अनुभव कहता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके IQ बहुत शार्प होते हैं. आप अग्री करते हैं इस बात को? वेरी वेरी शार्प होते हैं, उनकी ग्रास्पिंग पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है. अच्छा, जस्ट इमेजिन कीजिए, पहली बार जब मैंने टेलीफोन पिकअप किया था, जब मैं 8th स्टैंडर्ड पर था, आज एक छोटा सा बच्चा अभी भी क्रेडल में होगा, मोबाइल आता है, उसको SMS करना मालूम है, सब चीज मालूम है ना? कंप्यूटर से वो कितना एफिशिएंट हो गया है, सारा रिमोट कंट्रोल इतना छोटा सा नन्हा सा बच्चा करता है. हमको शायद उसके सारे पैरामीटर्स नहीं मालूम होंगे. बच्चों के IQ बहुत शार्प होते हैं, और क्योंकि आजकल के जनरेशन के बच्चों की IQ बहुत शार्प होती है, उसी के हिसाब से भी हमें चलना होता है. और बच्चों के ऐसे वंडरफुल आंसर्स होते हैं, तो सचमुच हमको लगता है रियली स्टूडेंट्स ऑफ दीज डेज आर वेरी इंटेलिजेंट. एक बार एक छोटा सा बेटा अपने पापा के पास गया और कहा, पापा डू यू थिंक पापाज आर ऑलवेज इंटेलिजेंट देन देयर चिल्ड्रन? आपको क्या लगता है, पापा हमेशा बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते क्या? पापा एकदम उसको स्टेयर करने लगे, माई डियर चाइल्ड ऐसे कैसे कंफ्यूजन हो सकता आपको? तो उस बेटे ने जवाब दिया, पापा अगर पप्पास अपने बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते तो एडिसन के पापा ने इलेक्ट्रिक बल्ब क्यों नहीं इन्वेंट किया? एंड द फादर वाज सेइंग, माय गॉड, टेरिफिकली इंटेलिजेंट है. यस, चिल्ड्रन ऑफ टुडे हैज गॉट टेरिफिक इंफॉर्मेशन. बहुत इंफॉर्मेशन होता है. पिताजी जो थे ना, बच्चों को डांट रहे थे, देख तेरे को मैथमेटिक्स में इतने कम मार्क्स मिलते हैं, अरे तेरे एज में रामानुजम हैज स्टार्टेड डिस्कवरिंग थ्योरीज ऑफ मैथमेटिक्स, तेरे उम्र में रामानुजम ने तो बड़े बड़े थ्योरीज इन्वेंट किए थे. तो उसने कहा, पापा एट योर एज नेहरू जी हैड बिकम द प्रधानमंत्री ऑफ द कंट्री. वेरी बी वेरी केयरफुल. आजकल के बच्चे जो है ना, बहुत इंफॉर्मेशन रखते हैं. मम्मी को अपनी बच्ची पर गुस्सा आ रहा था, बोल रहे थे, देख तेरे को इतने कम मार्क्स मिलते हैं, वो बाजू वाले स्टूडेंट को देख कितने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तेरे सर में भूसा भरा हुआ है क्या? तो बच्ची ने जवाब दिया, मम्मी व्हाट कैन आई डू, आफ्टर ऑल इट इज जेनेटिक एंड हेरिडिटरी. है ना? माय गॉड, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन द चिल्ड्रन ऑफ टुडे हैव. यस, दे हैव गॉट टेरिफिक IQ. और इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा. नाउ, IQ और ट्रांसपोर्ट कैसे जुड़ा हुआ है? यस, जो इंटेलिजेंस है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत यूज हुई है. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम इज, परफेक्टली राइट, अरे आप सभी इंटेलिजेंट हो, परफेक्टली राइट आंसर, एंड दैट इज व्हील. करेक्ट, व्हील की जो इन्वेंशन है, कहते हैं इट वॉज वन ऑफ द लैंडमार्क इन्वेंशन, जिन्होंने सारे सिस्टम को बहुत हद तक परिवर्तन कर दिया, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज अ व्हील. अभी ये जो बुद्धि जो मनुष्य आज यूज कर रहा है, इसको देखो अलग अलग स्तर पर हम कैसे यूज कर रहे हैं. ट्रेन को देखते हैं, शंघाई न्यू मैगलेव ट्रेन, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एंड द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक पैसेंजर ट्रेन, वो 2 मिनट में 300 किलोमीटर पर आवर पिकअप करती है, एंड द मैक्सिमम स्पीड इज 430 किलोमीटर्स पर आवर एंड वो रन करती है बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नेटिक पावर. और जब वो गाड़ी जाती है तो 10 मिलीमीटर्स अबव वो रेल ट्रैक से जाती है. उसका जो स्पीड पिकअप होता है, जो ब्रेक होता है, इज ऑल बाय मैग्नेटिक पावर. और क्योंकि वो रेल से 10 मिलीमीटर ऊपर होता है तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं रहता है, इसलिए इतनी स्पीड होती है. राइट अगर मुझे बॉम्बे से लेकर अगर अबू रोड तक आना है तो जो मैं अभी 12 से 13 घंटा लेता हूं, अगर इस ट्रेन से आऊं तो मैं 4 मिनट के अंदर यहां पहुंच सकता हूं. टेरिफिक, ऐसी इन्वेंशंस हो रही है थैंक्स टू दैट वंडरफुल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स एंड टेरिफिक पीपल इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हु आर वर्किंग. एयरप्लेन, फास्टेस्ट जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट SR-71 ब्लैकबर्ड, 3.3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड. है ना, कॉनकॉर्ड था लेकिन नाउ इट इज नॉट, दे नॉट यूजिंग इट फॉर कमर्शियल पर्पसेस, इसलिए कहा गया SR-71 ब्लैकबर्ड, जो साउंड से 3.3 टाइम्स स्पीड वेलोसिटी एयरप्लेन की है. कार, कार में जो बुद्धि कैसे यूज हुआ है, आजकल कहते हैं स्मार्ट कार है, दैट कैन टॉक विद द ड्राइवर, वर्क्स ऑन द पोजिशनिंग ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग थ्रू सैटेलाइट GPS. आपने बहुत लोगों ने ट्रैवल भी किया होगा इस पर्टिकुलर स्मार्ट कार से. एक ऐसी वंडरफुल कार है जहां पे द पैसेंजर्स कैन टॉक विद द कार, बस उसको चढ़कर बोलना है कि मुझे कहां पहुंचना है एंड इट विल कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस, वो खुद गाड़ी कैलकुलेट करता है. थैंक्स. ओके, गाड़ी खुद कैलकुलेट करेगा कि वॉट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कितना कम टाइम, और खुद लेकर जाएगा. ठीक है, आप उस गाड़ी में बैठकर ईमेल चेक कर सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, इंटरनेट सर्व कर सकते हैं, फिल्म्स देख सकते हैं. अगर आपको बहुत भूख लगेगी ना तो बस आप अपना बजट बताओ, उसी हिसाब से वो रेस्टोरेंट में लेके जाएगा. यहां तक कि नहीं, आप अपना टेस्ट बताओ कि भाई मुझे पंजाबी डिश चाहिए, तो वो पूरा अमेरिका में घूम के जहां पे पंजाबी ढाबा होगा वहां लेकर जाएगा. माय गॉड, टेरिफिक. यहां तक कि उस गाड़ी को अगर किसी और व्यक्ति ने टच किया तो वो अलार्म बजाएगा कि नो, यू आर नॉट द राइट पर्सन टू टच माय कार. And this is what is happening. इतना सारा innovations हुआ है thanks to the wonderful people who are working. Now the question is, in spite of all these inventions and discoveries, the million dollar question is the human being really happy? क्या वो सचमुच खुश है? यह हमें अपने आप से जरूर पूछना है. Where are we going wrong? ये समझना बहुत बहुत जरूरी है. आज तक हमने बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है. उसके कारण क्या हुआ है? आईक्यू बहुत डेवलप हुई है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है. इसलिए इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है, वे द लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग, वे द विजडम इज लॉस्ट इन नॉलेज, एंड वे द नॉलेज इज लॉस्ट इन इन्फॉर्मेशन. बहुत सारे बच्चों में इन्फॉर्मेशन है लेकिन एट द सेम टाइम द प्रेजेंट एकेडमिक सिस्टम इज कॉजिंग देम टेरिफिक स्ट्रेस. कितने स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे स्कूल जाने में एक्साइटेड होते हैं? हार्डली, वेरी फ्यू. देयर इज सम प्रॉब्लम देयर. एक बार एक कॉलेज बिल्डिंग में आग लग गई. जैसे ही कॉलेज बिल्डिंग में आग लगी तो फायर अलार्म बजाया गया. जैसे ही फायर अलार्म बजाया गया, सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स भाग भाग के नीचे आने लगे. कॉलेज बिल्डिंग के सामने बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, सारे स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में पहुंचे और डांस करने लगे. कॉलेज बिल्डिंग को आग लग गया है और बच्चे डांस कर रहे. भाई क्यों क्यों क्यों? My God, you share your sentiments of your children's perfectly right. 6-8 महीने के लिए कॉलेज बंद, वेरी गुड. सारे टीचर्स ने देखा, एक विद्यार्थी जिसका नाम था सुजन साइड में बैठ के बहुत रो रहा था. टीचर्स को बहुत अच्छा लगा, एटलीस्ट एक तो विद्यार्थी है, who has got some positive feelings towards the college building. सारे टीचर्स उसके पास गए और कहा, सुजन हमें आपको रोते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सारे कॉलेज में एक तो विद्यार्थी है जो कॉलेज बिल्डिंग के प्रति कुछ शुभ भावना शुभकामना रखता है, वेरी गुड. तो सुजन ने जवाब दिया, मैडम मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि कॉलेज बिल्डिंग को आग लग गई है, मैं यह सोच के रो रहा हूं कि अभी तक टीचर्स क्यों जिंदा हैं. भारत में एक समय पे गुरुकुल सिस्टम की प्रथा थी जहां पे गुरु और शिष्य के बीच में इतना गहरा संबंध था. देखो यह संबंध आज क्या हो गया है, राइट? क्या हो गया हम सभी जानते हैं. स्टूडेंट्स हम अक्सर पूछते हैं, न्यूटन का फंडा हम उनको सिखाते, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अगर आप स्टूडेंट्स का हम टीचर्स के प्रति ये व्यवहार होगा, डू यू थिंक वी विल बी मोटिवेटेड टू टीच यू? डू यू थिंक वी विल बी इतना हम उमंग उत्साह के साथ पढ़ाएंगे? नहीं. इसलिए एक बार एक विद्यार्थी से पूछा गया, अच्छा बताइए प्रोफेसर श्रेष्ठ है या मां श्रेष्ठ है? बोले किसी भी हालत में प्रोफेसर श्रेष्ठ है। बोला भाई क्यों? बोले इसलिए क्योंकि मां जब लोरी सुनाती है ना तो सिर्फ दो को सुलाती है, और जब हमारे प्रोफेसर साहब लोरी आरंभ करते हैं तो 60 का 60 पूरा क्लास हो जाता है, हुए ना प्रोफेसर श्रेष्ठ। दिस इज वॉट इज हैपनिंग, है ना। माँ बच्चे को सुबह बुलाती है, सो रहा होता है बेटे को, हे बेटा उठ, तेरे को कॉलेज जाने का समय हो गया। बेटा कहता मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। मम्मी कहती नहीं तेरे को कॉलेज जाना है। तो बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मम्मी पूछती अच्छा बेटा बता तेरे को कॉलेज क्यों नहीं जाना है? बोला दो कारण है, एक तो टीचर्स मुझे पसंद नहीं करते, दूसरा स्टूडेंट्स भी मुझे पसंद नहीं करते। माँ कहती फिर भी तेरे को कॉलेज जाना है। बेटा कहता बहुत देर से आप कह रहे हो कॉलेज जाना कॉलेज जाना, अब आप दो कारण बताओ जिसके कारण मैं कॉलेज जाऊँ। तो मम्मी ने जवाब दिया पहला कारण कि आपकी उम्र 50 वर्ष की है, और दूसरा कारण आप कॉलेज के प्रिंसिपल हो। कहने का भाव यह है स्टूडेंट्स को छोड़िए, स्टूडेंट्स को छोड़िए, टीचर्स और प्रिंसिपल की भी ऐसी अवस्था है। नो हर्टिंग ऑफ सेंटिमेंट्स और इमोशंस, आई माइसेल्फ एम अ टीचर, अगर कोई यहां टीचर्स बैठे ना नो हर्टिंग ऑफ सेंटिमेंट्स, लेकिन दिस इज अ फैक्ट। कहां हम गलती कर रहे हैं यह समझना बहुत जरूरी है। एक बार एक समाज में, एक गांव में एक अनाथ बच्चा था, रास्ते से चल के जा रहा था, अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उस अनाथ बच्चे को हॉस्पिटल लेके गया, तो उस गांव में एक समाज सेवक था, तो समाज सेवक ने सारे गांव वालों को बुलाया और कहा देखो उस अनाथ बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ऑपरेशन के लिए काफ़ी धन की ज़रूरत पड़ेगी, आप प्लीज़ उसका सहयोग देना। सबने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, यथाशक्ति सबने सहयोग दिया और उस अनाथ बच्चे का ऑपरेशन हो गया, नहीं बस एबल टू वॉक, चलने लगा। 20 वर्ष के बाद वही गांव वाले उस समाज सेवक के पास आए और पूछा सर आपको याद है 20 वर्ष पहले हमने एक अनाथ बच्चे को चलने में मदद की थी, अच्छा बताइए आज वो अनाथ बच्चा कहाँ पे है और क्या कर रहा होगा? तो समाज सेवक ने कहा आप अंदाज लगाइए कि आज वो कहाँ पे होगा क्या कर रहा होगा। तो कुछ लोगों ने कहा शायद आप ही की तरह समाज सेवक बन गया होगा। बोला अनफॉर्चुनेटली नॉट, कुछ और गेस कीजिए। कुछ ने कहा शायद वो आज एक नामी ग्रामी डॉक्टर बन गया होगा, अनफॉर्चुनेटली नॉट। और समाज सेवक ने कहा द फैक्ट इज वही अनाथ बच्चा आज एक हार्डकोर क्रिमिनल बन गया है एंड इज वाइलिंग अवे टाइम इन द सेंट्रल जेल। हे ऐसे कैसे हो गया? तो समाज सेवक ने कहा वैसे गलती उस बच्चे की नहीं है, गलती हमारी है। वाह, 20 वर्ष पहले हमने उस अनाथ बच्चे को चलने में इतना धन हमने सहयोग दिया था, आफ्टर 20 ईयर्स इज दिस द रिटर्न दैट यू आर गिविंग इट टू अस? तो समाज सेवक ने कहा हमसे एक फंडामेंटल गलती हो गई, हमने उस बच्चे को सिर्फ चलना सिखाया लेकिन कहां को चलना है हमने नहीं सिखाया। वी हैव टॉट द चाइल्ड हाउ टू वॉक बट वी डिड नॉट टीच हिम वेयर टू वॉक, कहां को चलना है हमने नहीं सिखाया, एंड दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड माई डियर फ्रेंड्स, आई कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। नाउ केरला इज अ स्टेट दैट बोस्ट ऑफ 100% लिटरेसी, वहां का हर व्यक्ति लिख सकता है पढ़ सकता है, लेकिन आप में से कितनों को मालूम है केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन द एंटायर कंट्री विच हैज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुसाइड केसेस। 100% लिटरेसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुसाइड केसेस, नाउ देयर इज समथिंग मिसिंग डायमेंशन, देयर इज समथिंग मिसिंग डायमेंशन, एंड दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जो लोग बॉम्बे से आए हैं मैं रिसेंट केस आपको बताता हूं। वन स्टूडेंट जिन्होंने 12th क्लास का एग्जामिनेशन बहुत अच्छे मार्क्स से पास किए, वेरी एक्टिव गर्ल, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, शी वेंट एंड कमिटेड सुसाइड। नाउ दिस इज वॉट वी नीड टू एनालाइज। IQ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी एडमिट इट, बट देर इज समथिंग मिसिंग डायमेंशन, वेर आर वी गोइंग रॉन्ग, कहां हम गड़बड़ कर दिए, एंड दिस इज वॉट इज इंपॉर्टेंट। द सेकेंड कंसेप्ट दैट हैज कम इज वॉट इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल कोशेंट। In 1995, Daniel Goleman, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब वॉट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इट मेक्स अस अवेयर ऑफ आस एंड अदर्स फीलिंग्स, दूसरों की भावनाओं को वो समझ सकते हैं। काफी बच्चे होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, उनकी IQ जो होती है मे बी 60% और 80%, लेकिन हम ये कहते हैं कि IQ is not a fixed quantity, it's a variable fluctuating quantity. अगर आज विद्यार्थी examination hall में जाकर से उसका 60% IQ आता है, the same student given the same type of questions the next day, उसका IQ can shoot up from 60% to as high as 120%, it can come down to as low as 20%. Why so much of a fluctuations? It depends upon the person's emotions. Jab wo examination center mein ja raha, with what feelings, with what emotions is he going? And that's what is very, very important. इसे काफी बार बच्चे कहते हैं, मम्मी मैंने तो परीक्षा बहुत अच्छी तरीके से लिखा था, पता नहीं वो सर किस मूड से करेक्ट कर रहे थे. या इट डिपेंड्स अपॉन आवर मूड ऑल्सो, बिकॉज वी टीचर्स आर ऑल्सो इमोशनल ह्यूमन बींग्स. फीलिंग्स, इमोशंस, एंड दैट इज वॉट डैनियल गोलमैन इंट्रोड्यूस्ड. इट गिव्स एम्पथी, मोटिवेशन, कंपैशन एंड एन एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्किलफुली टू प्लेजर एंड पेन. एम्पथी, दूसरों के दर्द को समझना. Motivation, दूसरों को उमंग उत्साह में लेके आना. Compassion also to do something with that. And pleasure and pain में skillfully we need to learn to respond. अभी why is EQ more important than IQ? Research ये कहता है कि जो भी लोग, people who have managed successful business don't necessarily have a high IQ. देखा गया है कि जो बहुत अच्छे businessman हैं, उनका IQ जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा हो. Not necessarily. इसलिए कहते हैं ईक्यू इज बेटर देन, और ईक्यू का न्यू स्टेप है. पर्सन्स हैविंग विलियम्स सिंड्रोम हैव लो आईक्यू बट ऑफन डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सेप्शनल म्यूजिकल टैलेंट्स. नाउ विलियम्स सिंड्रोम इज अ पर्टिकुलर डिजीज, और वो जो लो, उनका बहुत लो आईक्यू होता है लेकिन उनकी म्यूजिकल टैलेंट्स बहुत अच्छी होती है. तो ईक्यू के एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं. People of high IQ are comfortable with themselves, outgoing, happy, and have very good interpersonal relations. जो EQ होते हैं ना, वो बहुत outgoing होते हैं, बहुत खुश रहते हैं, हमेशा हर्षित मुख रहते हैं, और उनकी जो interpersonal relationships बहुत wonderful होती है, बहुत अच्छी होती है. Now this is very beautiful. ध्यान से सुनना. People are usually hired for their IQ, but fired for their lack of EQ. जब किसी को हम अपने organization में लेते हैं ना, तो उनका IQ को test करते हैं. लेकिन अक्सर कर उसको क्यों निकाला जाता है? क्योंकि उनके ईक्यू, लैक ऑफ ईक्यू के कारण, क्योंकि उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अक्सर करके प्रॉब्लम होते हैं. नाउ हाउ इज ट्रांसपोर्ट रिलेटेड विथ ईक्यू? नाउ दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. ये चित्र आपको क्या दिखाता है? एक्सीडेंट्स, कॉसेस ऑफ एक्सीडेंट्स. जो अक्सर करके एक्सीडेंट्स होते हैं उसके काफी कारण बताते हैं. नंबर वन, इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है. नंबर दो, प्रॉब्लम विद डिजाइन हो सकता है. सी, पुअर मेंटेनेंस हो सकता है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फोर्थ इज ड्राइवर बिहेवियर. नाउ दिस कुड बी आल्सो अ मेजर प्रॉब्लम इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड. रिसर्च देखो क्या कहता है. ओवर 95% ऑफ द एक्सीडेंट्स इन USA एंड यूरोप इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ ड्राइवर बिहेवियर कंबाइंड विद वन ऑफ द अदर थ्री फैक्टर्स. जो 95% एक्सीडेंट्स USA और यूरोप में रिपोर्ट किया गया है, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टू थ्री रीजंस, ड्राइवर बिहेवियर प्लेस अ वेरी मेजर रोल. ड्राइवर्स ऑलवेज ट्राई टू ब्लेम अदर्स फॉर द एक्सीडेंट, है ना? ये हम सभी अनुभवी हैं. जैसे ही दो गाड़ी टक्कर होती है, एक दूसरे को वो हम ब्लेम करते रहते हैं. बट द फैक्ट रिवील्स मोस्ट आर कॉज्ड बाय एक्सेसिव स्पीड और एग्रेसिव ड्राइवर बिहेवियर. जब हम चलाते हैं तो एक दूसरे को हमेशा जीतने की होड़ में, है ना, where we are not control of our own behavior. 80% of the drivers involved in motor vehicle accidents believed that the other party could have done something to prevent the accident. 80% hum feel karte hain ki samne wale ki vyakti ki galti hai. Only 5% admitted that they were at fault. Only 5% admit karte ki sachmuch mere haath ki galti thi. Now this is very, very important. A relationship between emotional factors and accidents have been reported based on a clinical studies of 400 injury cases, where it was found that more than half occurred when the person was worried, apprehensive and in a low emotional state. Accidents kyon hote hain? Pata lagaya gaya ki jab vyakti bahut worried hai, dar hai, bahut dar hota hai, and in a very low emotional state, sabse zyada accidents hote hain. Aur ye bahut wonderful hai. Very few accidents result from an act of nature like a tree falling on a vehicle. बहुत कम accidents ऐसे देखे गए हैं जहां पर एक पेड़ vehicle के ऊपर गिर गया और accidents होते हैं. Now what is we are trying to convey is we need to understand how to maintain our emotions and feelings. बहुत गुस्से से हम गाड़ी चला रहे हैं, be very sure our vehicle is going towards, you know, up. That's what is very, very important. We need to check it up. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ, दैट इज ऑल्सो देर. मैंने कहा तीनों तो हैं, लेकिन ड्राइवर बिहेवियर ऑल्सो प्लेस अ वेरी वेरी मेजर रोल. नाउ व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ ईक्यू? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? अगर हमें ईक्यू को डेवलप करना है तो क्या करना है? सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मोटिवेशन. सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मोटिवेशन. सबसे पहले अपने आप को ऑटो सजेशन दो, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं. आई एम अ वेरी वंडरफुल पर्सन. आई एम अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन. आई एम अ वेरी हैंडसम पर्सन. आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन. अपने आप को ऑटो सजेशन देना है. मैक्सिमम रिसर्च ये कहता है कि जब भी वो कोई व्यक्ति ना सुबह उठते ही साथ अपना चेहरा ऐनक में देखता है, और चेहरे को देखकर अगर हमको थॉट्स आए ओ माय गॉड आई एम नॉट एज फेमस, आई एम नॉट दिस दिस, अगर आएगा तो क्या होगा? आई माई सेल्फ आई एम सफरिंग फ्रॉम अ लो इमोशनल स्टेट. खुद हम डीमोटिवेट हैं तो दूसरों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? इसे सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करो. और जो भी ऑर्गेनाइजेशन भी जो भी रोल हम कर रहे हैं ना, एंजॉय दैट रोल. आई हैव गॉट अ वेरी वंडरफुल रोल टू प्ले. उसको हम एंजॉय करें. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे काफी किरदार हैं जो विलन के रूप में आए और फिर बाद में हीरो बन गए. आप बता सकते हैं वो कौन कौन है? माय गॉड रियली यू हैव गॉट टेरिफिक इंटेलिजेंस. हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा और जैकी श्रॉफ, विनोद खन्ना और प्राण. अच्छा, विलन के रूप में आए थे, हीरो बन गए. अच्छा, और आपके बच्चे यहाँ पे होते ना तो ये सब जवाब नहीं होता. उनका कुछ नए जनरेशन होते हैं. नए जनरेशन का अगर देखो आपके पास इन्फॉर्मेशन है क्या? हाँ, शाहरुख खान. या शाहरुख खान. देखो जो भी व्यक्ति बॉम्बे में आता ना फिल्म के सपने सजाकर, उसको यही लगता मुझे हीरो बनना है. लेकिन जब उनको पहली बार डायरेक्टर ने विलन का रोल दिया ना, तो उन्होंने क्रिब नहीं किया, क्या मैं हीरो बनने के लिए आया था, कहां से विलन बन गया. नहीं, विलन का रोल दिया तो बहुत एंजॉय किया उसमें. और जैसे ही विलन का रोल किया ना, तो डायरेक्टर की नजर उस पर पड़ गई और देखो फिर विलन से हीरो बन गए. राइट. शाहरुख खान जस्ट एज अ टेलीविजन एक्टर के रूप में आए थे. आमिर खान वॉज अ मॉडल. आज देखो इनकी फिल्म ऑस्कर तक पहुंच गई है. राइट. उसी तरह जो रोल हमें मिला ना, उस रोल को हम एंजॉय करें. और धीरे धीरे अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर की नजर नहीं पड़ेगी, तो सुप्रीम डायरेक्टर की नजर तो जरूर हम पर पड़ जाएगी. और पड़ी है इसलिए तो भगवान के घर आए हैं, ये भी एक खुशखबरी है. राइट. एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मोटिवेशन. हम अपने आप को जरूर मोटिवेट करें. दूसरा है ईक्यू का इमोशनल मैनेजमेंट. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम इमोशंस को मैनेज करना सीखें. अक्सर करके क्या होता है, हमारे इमोशंस एक प्रेशर कुकर की तरफ बंद हो जाता है. देयर इज नो आउटलेट. और वो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर होता जाता है एंड एक तरफ थम करके फूट जाता है. राइट. इतना प्रेशर कुकर की तरह वो एक्सप्लोड होता है. मेडिकल रिसर्च ये कहता है मोर देन 70% ऑफ द डिजीजेस ऑकर बिकॉज पीपल डोंट हैव एन आउटलेट ऑफ इमोशंस. है ना. अच्छा, ये कैसे हम ये कर सकते हैं? इट कैन ओनली बी डन बाई कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के द्वारा. फैमिली मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए. है ना. यस, इंटेलिजेंस ने आजकल इतने तक सिस्टम कर दिया, एवरीबडी हैज गॉट अ मोबाइल फोन्स. लेकिन द प्रॉब्लम इज घर के अंदर कम्युनिकेशन इज ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन घर के अंदर. यहां तक कि ग्राउंड फ्लोर से पापा SMS करते हैं बेटे को हु इज इन द फर्स्ट फ्लोर, हे योर लंच इज रेडी प्लीज कम डाउन. देखो ऐसी अवस्था हो गई है. ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन. हम सभी अनुभवी भाई बहन यहां बैठे हैं, अपने दिनों को याद कीजिए, बचपन के दिनों को. हम एक साथ मम्मी डैडी के साथ डाइनिंग टेबल में बैठते थे और हम अपने पूरे इमोशन शेयर करते थे. मम्मी आज स्कूल में ऐसा हुआ. है ना. पिताजी अपने इमोशन शेयर करते थे, मम्मी अपना इमोशन शेयर करते थे. राइट. आजकल क्या हो गया है, वी डोंट हैव अ सिस्टम. आज क्या करते हैं, लंच और डिनर हम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेलीविजन सीरियल्स. हमारी लंच और डिनर के टाइमिंग्स डिपेंडिंग अपॉन द सीरियल्स हो गए हैं. अरे भगवान कहते हैं भोजन करते समय भगवान को याद करो, और हम क्या क्या देख रहे हैं. चलो ऑर्डिनरी सीरियल्स हॉरर शो देखते हुए हम भोजन करते हैं. कैन वी इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू आवर फूड? कैन वी इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू आवर थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स? वो इमोशनल मैनेजमेंट नहीं हो रहा है. और कम्युनिकेशन है भी तो देयर इज नो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन. हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन है ही नहीं. एंड दिस इज एन एरिया where we should certainly focus upon, and that is heart to heart communication. जब हम 2 साल पहले कॉलेज में थे तो 6th semester का कंप्यूटर स्टूडेंट था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, चेंबूर में रहता था. ही वॉज इन द फर्स्ट फ्लोर. और थर्ड फ्लोर में देयर वाज अ गर्ल, ही हैड एन इमोशनल रिलेशनशिप विद दैट गर्ल, बोथ ऑफ देम वांटेड टू गेट मैरिड. लेकिन जब उनके मम्मी डैडी को पता चला, वो इतने इरिटेट हो गए, और बोथ बॉय एंड द गर्ल दे वॉकड अप नियर घाटकोपर रेलवे स्टेशन, सबर्बन ट्रेन आ रही है, दोनों एक साथ सामने. इट्स अ लाइव केस, बॉम्बे टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट किया गया था. और दूसरा दिन जब टीचर्स उनसे मिलने के लिए चेंबूर गए, तो एक एम्बुलेंस आई विद अ स्मॉल पैकेट फॉर द फर्स्ट फ्लोर, आफ्टर हाफ एन आवर अनदर पैकेट फॉर द थर्ड फ्लोर. व्हाई? बिकॉज वो इमोशनल एक्सचेंज ही नहीं है, देर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन. और ऐसे समय पर वी नीड टू फोकस दैट देर शुड बी सम इमोशनल मैनेजमेंट. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिकग्नाइजिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप. रिकग्नाइजिंग इमोशंस ऑफ अदर्स एंड मैनेजिंग, दूसरों के इमोशंस को भी हम समझें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिस तरह हम समझते हैं कि मेरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे के रोल को भी ऑब्जर्व करें. वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है, उसके रोल को भी अप्रिशिएट करें, उसके रोल जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है. एक बार क्या हुआ, पापा शाम को 7 बजे वापस घर में आए, तो देखा क्या, वाइफ जो है आराम से सोफा सेट में बैठे हैं, टेलीविजन ऑन है, आराम से पॉपकॉर्न खा रहे हैं. तो भाई साहब आए, देखे पता नहीं आज कैसी स्टेटस है, उन्होंने ड्राइंग रूम देखा तो बहुत हालत खराब थी ड्राइंग रूम. बोला क्या हुआ? कुछ नहीं. बोलो बताओ व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ नहीं. तो भाई साहब बेडरूम में गए तो माई गॉड, वैसे कि वैसे सुबह की वैसी की अवस्था है. फिर आकर वाइफ से पूछे, बताओ तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ नहीं. फिर भाई साहब किचन में गए तो ओ माई गॉड, उस रात का वैसा बर्तन वैसे ही पड़ा है. फिर आकर पूछे, प्लीज बताओ ना व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो बहन जी ने कहा, हर दिन शाम को आप जब 7 बजे आते हो तो आपका एक स्टैंडर्ड डायलॉग रहता है. मालूम क्या डायलॉग रहता है? सारा दिन आप घर में बैठकर करते क्या हो? आज मैंने कुछ नहीं किया. हमको लगता हमारी रोल सबसे बेस्ट है, मैं तो हीरो पादरी, बाकी सब साइड एक्टर्स है, मैं ही बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं ऑफिस में. नहीं, दैट इज नॉट राइट. दूसरों के इमोशंस को भी समझिए, दूसरों की भावनाओं को भी समझिए, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप. रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है वो भी जानना चाहिए. और जब हम कहते हैं मैनेजिंग रिलेशनशिप, तो हमारा जो स्नेह होना चाहिए ना, इट शुड बी अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ स्नेह. अगर हम ये कहते हैं हम बच्चों को बढ़ा रहे हैं क्योंकि बुढ़ापे में वो हमको हमारा ध्यान देंगे, दैट इज नॉट ऑल्सो अनकंडीशनल, दैट इज ऑल्सो नॉट अ अनकंडीशनल लव. आप कहेंगे इस संसार में वैसे अनकंडीशनल लव होता किधर है? दो रिलेशनशिप में अनकंडीशनल लव होता है, एक होता है गुरु का अपने शिष्य के प्रति, और दूसरा होता है माँ का स्नेह. माँ का स्नेह इज एन अनकंडीशनल लव, राइट? निस्वार्थ स्नेह होता है. एक बार मम्मी जो थी ना किचन में भोजन बना रही होती है, तो छोटा सा बेटा मम्मी के पास जाता है और कहता है, मम्मी मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है. मम्मी कहती, व्हाट? बोला, यस. अच्छा, लेट मी सी. मम्मी देखती है तो उस बेटा उस बिल में लिखता है, मम्मी आपने इस महीने 3 बार नीचे जाकर ग्रॉसरी से शॉप से कुछ सामान खरीदने के लिए कहा, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर ट्रिप, 30 रुपीज. मम्मी आपने बकेट यहां से यहां उठा के रखने के लिए कहा, 40 रुपीज. मम्मी और छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी हेडेक जॉब, 100 रुपीज. पूरा महीने का बिल 660 रुपीज, क्योंकि आप मेरे माँ हो, 60 रुपीज डिस्काउंट, 600 रुपए का बिल. मम्मी देखती है, वाह वेरी गुड. और बेटे को देखती है मुस्कुराता हुआ चेहरा. मम्मी उसके दूसरे पेज में जो खाली होता है ना, मम्मी उसमें लिखती है, और बेटा बहुत ध्यान से देखता है. मम्मी लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज. जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज. मैंने आपको चलना सिखाया, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया. मैं आपको अपने स्कूल में, आपके स्कूल में लेकर जाती थी, लेकर आती थी. एट द एंड मम्मी लिखती है 0 रुपीज, और बेटे को देती है. बेटा उसको देखता है, जैसे उसके आंखों में आंसू आ जाते. वो मम्मी को देखता और कहता, मम्मी आई एम वेरी सॉरी. और अपने पेज में वो कट करता है और कहता, मम्मी पेड इन फुल, पेड इन फुल बट इनडेप्टेड फॉर एवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा. हम कितना भी करें ना, तो मम्मी डैडी के कर्जे को कभी समाप्त नहीं करते. इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं. दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज अवर रिलेशनशिप. एक चीज हमें सीख कर जाना चाहिए यहां से, भले कुछ भी नहीं सीखे ना, तो ये जरूर सीख के जाए, वी हैव टू लर्न हाउ टू अप्रिशिएट अदर्स. और ये शायद हमारे समाज में बहुत अभाव है. वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू अप्रिशिएट. हर एक व्यक्ति अप्रिसिएशन चाहता है एंड वी हैव टू लर्न दिस टेक्निक, राइट. मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं. अमेरिका में एक बार केस हुआ. एक स्टूडेंट था क्लास में, बहुत मोटा सा था, लास्ट बेंच में हमेशा बैठता था, विद अ वेरी लो आईक्यू, बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं था. उसका नाम था जॉन, और क्योंकि वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में एकदम वो था, तो सब लोग उसको डम्बो करके बुलाते थे. डम्बो अर्थात दब्बू, है ना. सब लोग, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, है ना, उनके फ्रेंड्स हो, सभी लोग उसको डम्बो डम्बो करके बुलाते थे. एंड ही स्लोली स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट. हर एग्जामिनेशन में उसको हार्डली यूज टू गेट 20-30% मार्क्स. लेकिन टीचर्स का उसके प्रति बहुत अच्छा भावना थी, क्योंकि वो क्लास में मस्ती नहीं करता था, तो किसी तरह उसको ग्रेस मार्क्स देकर उसको पास करा देते थे. जब ये स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड में पहुंचा और जब टीचर्स को रिपोर्ट कार्ड मिली, ओ माई गॉड, डम्बो गेटिंग 60% मार्क्स, इम्पॉसिबल. लेकिन रिपोर्ट कार्ड कहता है. तो टीचर्स क्लास में आए और हर दिन उसको डम्बो करके बुलाते थे. उस दिन उन्होंने कहा, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, हमें बहुत खुशी है आपको ये बताने के लिए कि आपको 60% मार्क्स मिले. अब जॉन तो ऊपर देखने लगा, भाई मार्क्स कहां से टपक गए हैं. सारे उनके फ्रेंड्स में कहा, जॉन गेटिंग 60% मार्क्स, वेरी गुड, कीप इट अप. टीचर्स ने भी मोटिवेट किया. अब ये भी बहुत एक्साइटेड हो गया जॉन. अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर मम्मी के पास गया. मम्मी, एज यूजुअल, लीस्ट बिट इंटरेस्टेड. हाँ, हमेशा की तरह तेरे को ग्रेस मार्क्स मिलेगा. नो मम्मी, दिस टाइम आई हैव गॉट 60% मार्क्स. माय गॉड जॉन, गुड, कीप इट अप. दूसरे साल यही विद्यार्थी ने एग्जामिनेशन लिखा. ही नॉट ओनली पास विद डिस्टिंक्शन बट ही टॉप द क्लास. अमेरिका में क्या होता है, कुछ भी कुछ अलग चीज होती है ना, दे डू अ लॉट ऑफ R&D. और जैसे उनको पता चला एक स्टूडेंट ऑलवेज ग्रेस मार्क्स, सडनली 60% मार्क्स, ऐसा परिवर्तन क्या ऐसा हो गया. वो सारे टीम को ले आए विद लॉट ऑफ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप रिसर्च करने के लिए. और उन्होंने टीचर्स को कहा, वी वॉन्ट टू एनालाइज राइट फ्रॉम द LKG आंसर शीट्स. तो टीचर्स एकदम ऑनेस्टली बोले, देखो भाई, हमेशा इसको ग्रेस मार्क्स में हम पास करते हैं. नो प्रॉब्लम. और जैसे जैसे वो देखते गए एक एक क्लास के आंसर शीट्स मिस्टर जॉन के, और जब वो 9th स्टैंडर्ड में पहुंचे, दे गॉट द शॉक ऑफ देयर लाइफ. क्या शॉक था, जॉन को वैसे 20% मार्क्स ही मिले थे. बिकॉज ऑफ अ कंप्यूटर एरर इट वॉज मिस प्रिंटेड एज 60% मार्क्स. My God, how can this happen? Immediately they got excited. Next year ka answer sheet dekhe. My dear friends, John got the marks at actuals. Usko actual mein jo marks mile the, unhone lick kar kiya. Bachpan se humne usko programming kiya. Tum dabbu ho, dabbu ho, dabbu ho. He slowly started accepting it. Programming kiya usne apne mind par. Jaise hi logon ne kaha, hey, you are good. You can do it. What a wonderful marks. Dekho, uska self-esteem jaga. We have to learn how to appreciate others. हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए. हम क्या करते हैं, अक्सर हमारे बच्चों की जो रिजल्ट्स है दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं. एटलीस्ट इफ नॉट फॉर योर सेक, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक, डोंट डू इट. कभी भी हम जब वो रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है, द फर्स्ट क्वेश्चन मम्मी आस्क इज, अच्छा राजेश को कितना मिला, सुनीता को कितना मिला. प्लीज प्लीज, ज्ञान सरोवर से हम जा रहे हैं ना, तो ये ना करें. ये जो हमारे बच्चे हैं वो उस परमात्मा का देन है. हम ट्रस्टी है, उसके देन को हम संभाल रहे हैं. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. मैं तो बस ट्रस्टी हूं. वो जो है जैसा है उसका देन है. मेरा बहुत प्यारा सा लाडला सा बच्चा है. हैव दिस काइंड ऑफ अ थॉट. और जब ये थॉट हमारे माइंड पर होगी ना, यू कैन फील द डिफरेंस. और एक प्लीज, जो बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं, एंड दैट इज एडवाइस. किसी भी बच्चों को आजकल एडवाइस बिल्कुल पसंद नहीं आता है. वो सब इतना वो थक जाते हैं एडवाइस सुन सुन सुनकर. अगर आपके बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है ना, तो बस 2 हफ्ते के लिए हम एडवाइस करना छोड़ दें, एंड यू विल फील द ट्रांसफॉर्मेशन. वो खुद आकर आपको घूरने लगेगा, पता नहीं ज्ञान सरोवर में जाके मम्मी डैडी को क्या हो गया है. स्टार्ट फीलिंग इट. और खुद पूछेगा, मम्मी देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, आप देख रहे हो ना. एडवाइस करेंगे ना, पीपल स्टार्ट रिएक्टिंग टू इट. हम पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करने के बदले नेगेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं. मैंने देखा है, जब भी छोटा बच्चा जाके दीवार से टकराता है ना, मैंने देखा 99% मम्मी लोग दौड़ दौड़ कर आते हैं, बेटा कोई बात नहीं कोई बात ना, दीवार को मारते हैं. भाई दीवार की क्या गलती, दीवार तो वैसा का वैसे ही खड़ा था, गलती तो आपकी थी जो आप जाके टकराए, है ना. बचपन से हम क्या प्रोग्रामिंग दे रहे हैं, आपके दुख के लिए दीवार दीवार रिस्पॉन्सिबल. अब दीवार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. नहीं, प्लेजर एंड पेन, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है हमें. प्लीज इस तरीके का प्रोग्रामिंग हम नहीं करें. ऑन द कॉन्ट्ररी वी हैव टू डू ए वेरी वंडरफुल पॉजिटिव प्रोग्रामिंग. बच्चों को हम हमेशा मोटिवेट करें एंड दैट्स वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक और बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा जो अक्सर करके मैंने देखा है. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद अ चाइल्ड, यू नो, इट्स अ प्रॉब्लम विद अस हु गिव अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन. अक्सर कर हम अपने बच्चों को कहते हैं, राजू डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस. Now, the problem is not with Raju. Raju is a thorough gentleman. The problem is with us who are giving these kinds of statement. Ye nahi karna hai, ye nahi karna, ye nahi karna hai. Now, where is the problem? Suppose Raju hai, hum kehte Raju, don't bang the fridge door, Raju. Can you visualize the word don't? Nahi, we cannot visualize the word don't. To us bacche ka kya picture aa raha hai? Bang the fridge door. Kyunki don't hum visualize kar hi nahi sakte hain. तो हम 10 बार कह रहे राजू डोंट बैंग द फ्रिज डोर, उसके मन में पिक्चर बन रहा है बैंग द फ्रिज डोर और हमेशा बैंग करता है, फिर कहता उफ मम्मी ने मना किया था. चेंज अवर स्टेटमेंट, राजू प्लीज क्लोज द फ्रिज डोर स्लोली. देखो चेंज हो गया ना कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में चेंज हो गया. तो डोंट डू दिस, डोंट डू दिस करने के बदले टेल देम व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू इट एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. और यही आध्यात्मिकता में प्रॉब्लम हो गया है. भगवान ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नेति नेति कर दिया है. गॉड इज नॉट दिस, गॉड इज नॉट दिस, गॉड इज नॉट दिस. तो हमारे मन में पिक्चर क्या बन रहा है, गॉड इज दिस, गॉड इज दिस, गॉड इज दिस, और सर्वव्यापी कर दिया भगवान को हमने. अभी हमें करना है ये नेति नेति का भी हमें बंद करना है. भगवान कौन है ये समझना है और दूसरों को समझाना है. यस गॉड इज अ पॉइंट ऑफ लाइट, नाउ दैट इज व्हाट इज रियलिटी. उसको जब हमें समझ में आती है तो परफेक्ट क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाती है. इसे जब भी हम बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, नेवर मेक अ नेगेटिव कमेंट, ऑलवेज स्टार्ट विथ पॉजिटिविटी. यू आर वेरी वंडरफुल पर्सन, यू आर वेरी नाइस पर्सन, है ना. अक्सर करके यूथ के प्रोग्राम में एक बहुत अच्छी बात बताते हैं और मुझे ये बहुत एक्साइटिंग लगती है जो मैं आपके साथ, यूथ जो विंग है उन्होंने एक बहुत अच्छी टेक्निक डिवाइस की है, है ना. हम बच्चों को बचपन से पढ़ाते हैं व्हाट इज पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, नेगेटिव. व्हाट इज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, माय गॉड यू आर रियली वेरी इंटेलिजेंट है. व्हाट इज नेगेटिव इनटू नेगेटिव, माय गॉड टेरिफिक पीपल. व्हाट इज पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, बच्चों को बचपन से पढ़ा रहे हैं. सपोज एक विद्यार्थी क्लास में होता है, वो मैडम को पूछता है, मैडम व्हाई इज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव भी तो हो सकता है. मैडम स्टार्ट स्टेयरिंग इट, आपके मम्मी डैडी ने आपको अच्छे संस्कार नहीं सिखाया क्या. वो सोचता है व्हाट इज दिस टू डू विद संस्कार यार, है? अब इसको समझ भी नहीं आ रहा व्हाई इज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव. वो घर में जाता है, जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है मम्मी का टेप चालू होता है, पढ़ो 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 पढ़ो. वो धीरे से पूछता है, मम्मी व्हाई इज नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव ना, इट कैन इवन बी नेगेटिव. और मम्मी उसको फिर से देखने लगती है. दिस इज अ वे हमारे परदादा ने भी पढ़ा था, हमारे पेरेंट्स ने भी पढ़ा, हमने भी ऐसे पढ़ा, बेटर यू ऑल्सो स्टडी इन द सेम वे. एंड इज वरीड, मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाई इज नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव. कैसे समझाएंगे, वी कैन एक्सप्लेन इट विद अ वैल्यू सिस्टम, नंबर लाइन सिस्टम. जीरो है, प्लस वन है, प्लस टू है, माइनस वन. इफ आई से व्हाट इज प्लस टू इनटू प्लस टू, इट इज एक्चुअली एडिंग प्लस टू ट्वाइस, इट इज एक्चुअली एडिंग प्लस टू ट्वाइस. बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए बहुत सिंपल टेक्निक जो यूथ विंग ने बनाया मुझे बहुत पसंद आता है. बच्चों को ये समझाना है, जो कार्य हम करना चाहते हैं अगर उस कार्य को नहीं करते हैं तो रिजल्ट इज नेगेटिव. हम बहुत पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ते हैं तो रिजल्ट इज नेगेटिव. नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज नेगेटिव. जो कार्य हम नहीं करना चाहते हैं अगर उस कार्य को करते हैं तो रिजल्ट इज नेगेटिव. मैं ज्यादा टेलीविजन देखना नहीं चाहता हूं लेकिन क्या करूं देख लेता हूं तो रिजल्ट इज नेगेटिव. नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज पॉजिटिव. जो कार्य हम नहीं करना चाहते हैं नहीं करते हैं तो रिजल्ट इज पॉजिटिव. मैं एग्जाम में अनफेयर प्रैक्टिस चीटिंग नहीं करना चाहता हूं नहीं करता हूं तो रिजल्ट पॉजिटिव आती है. जो कार्य मैं करना चाहता हूं करता हूं तो पॉजिटिव है. मैं सबका आदर सम्मान करना चाहता हूं करता हूं तो रिजल्ट पॉजिटिव है. लेकिन क्लाइमैक्स अभी आने वाला है. एक बार मैं वर्कशॉप करा रहा था, जब मैं ये समझा रहा था तो एक स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है, सर आई हैव गॉट अ डाउट. मैंने कहा भाई पूछो. बोला सर तीसरा वाला फिर से समझाएंगे. मैंने कहा वेरी सिंपल यार, आपको समझ में नहीं आती बात. जो कार्य हम नहीं करना चाहते नहीं करते तो रिजल्ट पॉजिटिव है. बोला सर वही तो डाउट है सर, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं सर, नहीं पढ़ता हूं सर, रिजल्ट पॉजिटिव होनी चाहिए ना. एंड आई वाज थॉरली कंफ्यूज्ड, माय गॉड आजकल के बच्चे जो होते हैं ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. और सब बच्चे हंसने लगे, हे प्रोफेसर फंस गया, प्रोफेसर को भी नहीं मालूम। और मैंने उनको रोकने के लिए एक स्टेटमेंट किया, वेट 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 भाई, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये लॉ ऑफ मैथमेटिक्स है, मैं कौन होता हूँ उसको चेंज करने वाला। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, नहीं पढ़ते तो रिजल्ट जरूर पॉजिटिव होगी। तो बच्चे बहुत हो जाए, अच्छा ऐसा भी है। फिर मैंने कहा, हमें से कितनों को मालूम है कि आइंस्टीन एंड एडिसन वे स्लो लर्नर्स, आइंस्टीन एंड एडिसन वे स्लो लर्नर्स, जिनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आज भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आती है। दे वे स्लो लर्नर्स, बचपन में इतने टेरिफिकली इंटेलिजेंट नहीं थे वो, है ना। हमको मालूम है रामानुजम, हु डिस्कवर्ड वेरियस थ्योरीज ऑफ मैथमेटिक्स, आजकल के प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स को भी बैफल करते हैं, वॉज नॉट दैट हाईली एजुकेटेड। रविंद्रनाथ टैगोर जी, द फर्स्ट इंडियन नोबल लॉरिएट टू विन द नोबल प्राइज, वॉज ही डिस्पाइज द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आप में से कितनों ने शिव खेरा का नाम सुना है? मेजॉरिटी ऑफ यू। आप में से कितनों को मालूम है, इज अ वेरी फेमस मोटिवेशनल ट्रेनर, और उसकी फेमस किताब यू कैन विन। हमें से कितनों को मालूम है कि ही फेल्ड इन हिज 10 स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस। हमें से कितनों को मालूम है कि इज जस्ट अ बीकॉन थर्ड क्लास ग्रेजुएट, बट शिव खेरा, आई एम स्पीकिंग ऑफ शिव खेरा। और आज जो कंप्यूटर के एरिया में जो सबसे नंबर वन है, इज मिस्टर बिल गेट्स। हमें से कितनों को मालूम है, ही इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट। नाउ फ्रेंड्स, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आज घर जाते ही साथ आप अपने बच्चों को नहीं बोलना कि ड्रॉप आउट हो जाए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नो डोंट गेट मी रॉन्ग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर हमारा बच्चा पढ़ाई में इतना होशियार नहीं है, कोई बात नहीं, देयर इज सम एरिया वेयर ही वुड बी वेरी गुड एट, राइट। सचिन तेंदुलकर इज वेरी गुड इन क्रिकेट, क्रिकेट, ही इज जस्ट अ कॉमर्स ग्रेजुएट, फाइन, ही इज वेरी गुड एट क्रिकेट। लेकिन हम अगर पढ़ाई में नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ते, रिजल्ट पॉजिटिव जरूर हो सकती है, प्रोवाइडेड मैं एक ऐसा एरिया चूज करे इन विच आई एम गुड एट, और उसमें वही डिटर्मिनेशन यूज करे तो हम जरूर सफल होंगे, इज अ लॉ ऑफ नेचर। इसलिए ऐसे कोई भी बच्चे अगर थोड़ा लो है, डोंट वरी, कीप ऑन अप्रिशिएटिंग अदर्स। नाउ ये सब हम कैसे करेंगे, हाउ डू वी डू दिस, राइट। And for that, we require SQ, that is spiritual quotient. Now, what do you mean by spiritual quotient? Very simple definition. It teaches us a technique of positive attitude. हमें मुस्कुराना सिखाता है। मैं अपने students को कहता हूँ, अगर आपकी SQ अच्छी है, उसका parameter मालूम क्या है? आप 6-8 महीने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, 6-8 महीने के बाद अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं और जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, 10 क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, फिर भी अगर आप मुस्कुरा सकते हैं ना, तो यू हैव गॉट टेरिफिक स्पिरिचुअल क्वेश्चन। वाह, व्हाट अ क्वेश्चन पेपर, क्या डायग्राम्स हैं, हैं? पहली बार मैं ऐसा डायग्राम्स देख रहा हूं। अगर यह ऐसी सिचुएशन में भी अगर वो विद्यार्थी मुस्कुरा सकता है, तो यस, ही हैज गॉट अ वेरी टेरिफिक स्पिरिचुअल क्वेश्चन, है ना। स्पिरिचुअल क्वेश्चन हमें मुस्कुराना सिखाता है, हर्षित मुख होना सिखाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा कर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर, तो वह जिंदगी है, वह जिंदगी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हार गए और फिर इफ आई कैन बाउंस बैक with the same level of enthusiasm and smiling face, yes, I have succeeded. Aur spiritual quotient malum, kisi vyakti ke chehre ko bhi dekhkar pata lagaya ja sakta hai. Kehte face is the index of our mind, hai na? You smile and the world smiles at you. Muskurahat aapka chehre ka wo darpan hai jisse siddh hota hai ki aapka dil aapke sthan par hai. A smile is a window on your face to show that your heart is at home. Kaise samjhenge spiritual quotient ko? Understand the philosophy of मैनेजमेंट, बस ये मैनेजमेंट की फिलॉसफी समझो। एंड व्हाट इज अ फिलॉसफी, लिसन टू इट, सी टू इट वेरी केयरफुली, बस यही समझना है, मैन अ जेम, हर एक व्यक्ति आत्मा है, जेम अर्थात हीरा, यस आत्मा हीरा है, बस यही समझे, सभी आत्माएं हैं, सभी हीरे हैं। और हम जेम कैसे बनेंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ENT डॉक्टर के पास, राइट। E stands for enlightenment, enlightenment, स्वयं का परिचय कि आखिर मैं हूं कौन। एक व्यक्ति रस्ते से चल रहा, अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उसको पकड़ के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर कहता है ब्रिंग द पेशेंट इन, दुर्भाग्यवश पेशेंट का डेथ हो जाता है। जब वो ऑपरेशन थिएटर खुलता है तो डॉक्टर कहता है टेक द बॉडी आउट, आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त इज जस्ट अ बॉडी, पेशेंट एंड बॉडी। सपोज एक व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना, वो कहता है मेरे मृत्यु के बाद मैं अपने हार्ट को डोनेट करना चाहूंगा, किडनी को डोनेट करना चाहूंगा, आइस को डोनेट करना चाहूंगा, विल पेपर लिखता और गुजर जाता है. इमीडिएटली देयर इज अ बायो कंपैटिबल सिस्टम. ये आंखें यहां नहीं देख पाती, जैसे मैं यहां के आंखें यहां फिट करता हूं तो देख पाती है. हार्ट जैसे मैं यहां करूंगा तो इट इज एबल टू डू इट. किडनी यहां है, काम नहीं कर रही, जैसे मैं किडनी को यहां करता हूं इट इज एबल टू पंप इन ब्लड, पंप आउट ब्लड. हम आयरन बॉक्स को टच करते इमीडिएटली आई रिमूव माई हैंड. क्यों? रिफ्लेक्स एक्शन विच गिव्स अ सिग्नल टू माई ब्रेन. और मृत्यु के बाद सारा का सारा शरीर आप अग्नि में डाल दो, उफ तक नहीं करती है. क्यों नहीं करती है? सबसे पहले जब विवेकानंद रामकृष्ण गुरुजी के पास गए, दरवाजा खटखटाया तो रामकृष्ण गुरुजी ने अंदर से पूछा आप कौन हो? तो विवेकानंद ने कहा वही जानने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ. वेरी गुड, कम इन कम इन कम इन. है ना? तो स्वयं को समझना है कि मैं शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ. एंड दिस कैन कम थ्रू एनलाइटमेंट. एन स्टैंड्स फॉर नेचर. अपने नेचर को समझे, स्वधर्म को समझे. और हमारा नेचर क्या है? नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर. ये आत्मा के सात गुण हैं. करेक्ट? जैसे आप पानी लेंगे ना तो पानी का निजी गुण क्या है? शीतल होता है. इसे प्यास लगती है तो वो पानी पीते हैं, उस पानी को पुट इट अक्रॉस अ बीकर, फ्लेम में डाल दीजिए, गर्म हो जाएगा. फिर बाद में आप फिर से इसको अलग कर दीजिए, फिर से शीतल बन जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका वो निजी गुण है. करेक्ट? उसी तरह जब एक व्यक्ति सामने आता है तो हम एकदम गर्म हो जाते हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं. लेकिन जब घर में जाते हैं तो लगता है ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ऐसा करना नहीं चाहिए था. क्यों? उस समय हम अपने निजी गुण में आए. कहते हैं संसार में देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल. कैन यू गेस हु आर दोज टू टाइप्स ऑफ पीपल? देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल. ओके, गुड एंड बैड. या एनीथिंग एल्स? देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव थिंकर्स एंड नेगेटिव थिंकर्स. या हैव एंड हैव नॉट. या वेरी गुड. एक बार मैं स्टूडेंट्स को ले रहा था तो एक स्टूडेंट खड़ा होकर कहता सर बॉयज एंड गर्ल्स सर. या दैट इज ऑल्सो राइट, नो प्रॉब्लम. बट देर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड. द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल हु ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस वेन दे कम. द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल हु ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस वेन दे गो. वेन दे गो. पहले कैटेगरी जो हमें बहुत खुशी देते जब वो आते हैं. दूसरे कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं वो हमें बहुत खुशी देते जब वो जाते हैं. यू नो द डिफरेंस. क्यों? क्योंकि जिन आत्माओं के साथ हमारा ये ऑपरेशन होता है ना उनसे हम मिलना चाहते हैं. लेकिन जितना इससे हम ऑपरेट कम करते हैं उनसे हमें हमको पसंद नहीं आते. एंड प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रांसपोर्ट अवर सेल्व्स टू न्यू संस्कार्स. ट्रांसपोर्ट करना है, हमारे संस्कारों को चेंज करना है, परिवर्तन करना है. आप यहाँ पर आए हैं, तीन चार दिन यहाँ रुक रहे हैं. वी हैव टू लर्न हाउ टू ट्रांसपोर्ट. एंड हाउ कैन वी डू दिस? वी कैन डू थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन. मेडिटेशन एक बहुत वंडरफुल टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं. आप में से कितनों ने दादी जानकी जी का नाम सुना है? अरे आप में से मैक्सिमम. क्या विशेषता है दादी जानकी जी की? जो नए आए हैं हम उनके लिए बताते हैं. दादी जानकी जी इज द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द यूनिवर्स, अ वुमन ऑफ परफेक्ट रिदम, द डेल्टा वुमन ऑफ द वर्ल्ड. जो एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ इस ईश्वरी विश्वविद्यालय हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन. ईसीजी इज एन इंस्ट्रूमेंट वेर इन वी कैन मेजर द वाइब्रेशंस ऑफ आवर हार्ट. ईईजी जो है, इलेक्ट्रो एनसाइक्लोग्राफी, ईईजी, इट कैन मेजर द वाइब्रेशंस ऑफ आवर माइंड. जब भी हम कुछ भी संकल्प कर रहे हैं ना, वो चार प्रकार के संकल्प होते हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज नोन एज अ बीटा वेव्स, where we have got 7 to 14 cycles per second. इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है depending upon different psychiatrist, but I got this first hand information from a very famous psychiatrist from Bangalore. Then you have got alpha waves, 5 to 6 cycles per second. Then you have theta waves, 3 to 4 cycles per second. Delta waves, 1 to 2 cycles per second and 0 is brain dead. अभी हम कौन सी अवस्था में हैं ये चारों में से? We are all in beta waves. We are all in beta waves. अच्छा, आपके vibrations और मेरे vibrations में ज्यादा fluctuation किसके हो रहे हैं? किसके ज्यादा fluctuation हो रहे हैं? मेरे. है ना? आपको तो बहुत अच्छा है, पसंद आए तो सुनो, नहीं तो आराम से सो जाओ. वेरी सिंपल फॉर मी. है मेरे लिए बहुत टफ चैलेंज है क्योंकि क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी. मेरे को टाइम भी मैं देख रहा हूँ, वॉच भी देख रहा हूँ, क्या 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 कवर करना है, विच हैव टू डिलीट. सो मेनी वाइब्रेशंस आर गोइंग ऑन, राइट? दूसरे स्पीकर्स भी तैयार हैं, दे आर गेटिंग एक्साइटेड टू कम टू द स्टेज. आई एम एबल टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस ऑल्सो. right? So I am fluctuating at a high. But for those people, I'll just take another 5 to 7 minutes, okay, so that you are relaxed. Second is what is known as an alpha waves. Now, these alpha waves where a subconscious mind is very, very strong, very, very powerful. Ye malum kab aata hai? Suppose aap 10:30 baje so rahe ho aur aapko dusra din subah office mein 8:30 baje aana hai. Aur aap 6 baje ka alarm rakhte ho. Aur jaise 6 baje ka alarm basta, tuck, off. Aadha ghanta main jara sota hoon. और ये आधा घंटा आपको अति इंद्रिय आनंद का अनुभव देगा. हाँ, आप सभी अनुभवी हैं. ऐसी अवस्था जहां पे हम सोए भी नहीं थे तो जागे भी नहीं थे. ट्रांजिशन स्टेज, दैट इज व्हाट इज नोन एज एन अल्फा वेव्स. राजयोग मेडिटेशन में हम अपने आप को इस अल्फा स्टेज पे लेकर आते हैं जहां हमारी सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत पावरफुल होती है. और उस स्टेज में अगर हमने जो भी संकल्प किया ना, ऑटोमेटिकली वो होना 100% निश्चित है अल्फा वेव्स में. इसलिए कहते जब हम राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं तो हम सोए भी नहीं तो जागे भी नहीं, वो ट्रांजिशन स्टेज. अच्छा, थीटा वेव्स कब होता है? जब हम एकदम गहरी नींद में सो जाते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ स्लीप. एक ऐसी अवस्था में अगर हमारे घर में चोर आकर टेलीविजन, फ्रिज तो छोड़ो, अगर हमको भी उठा के लेके जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा. दैट इज व्हाट इज नोन एज अ थीटा वेव्स. एंड डेल्टा वेव्स डॉक्टर्स कहते हैं द स्टेट ऑफ कॉमा. नाउ दादी जानकी जी इज बिन रिफर्ड एज द डेल्टा विमन ऑफ द वर्ल्ड. नेचुरली जीरो इज ब्रेन डेड. दादी जानकी जी इज बिन रिफर्ड एज द डेल्टा विमन, जो डॉक्टर्स कहते हैं द स्टेट ऑफ कॉमा. कैन यू इमेजिन दैट? दादी जी को कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया? बाय लैंजले पोर्टर, साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. दादी जी को कहा आप सो जाइए. दादी जी को ये इलेक्ट्रोड सब रखे गए और जब दादी जी गहरे नींद में हो गए, अचानक बुलाया. जस्ट इमेजिन कीजिए, हम गहरी नींद पर कोई बुला दिया तो क्या होगा, है ना? जन्म जन्मांतर के संस्कार उभर जाएंगे, इतना गुस्सा आ जाएगा हमको. लेकिन गांधी जी का जो वाइब्रेशंस थे, इट वॉज 1.2 साइकिल्स पर सेकेंड. दादी जी को कहा, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए गए, फिर द सेम डेल्टा स्टेट. दादी जी को कहा 1 to 100 काउंट कीजिए, 100 to 1 काउंट कीजिए, सेम थिंग. दादी जी को अचानक एक टॉपिक दिया और कहा गया अब बात करिए, सेम थिंग. अगर मैं किसी एक भाई या बहन को बुला लूँ और कहूँगा प्लीज गिव मी वोट ऑफ थैंक्स, आपकी अवस्था क्या होगी मैं जान सकता हूँ. नाउ डोंट वरी, आई एम नॉट कॉलिंग गोइंग टू कॉल एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस. लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं क्या अवस्था होगी, राइट? मैंने आपको फिर से कम बैक टू द फर्स्ट स्लाइड. मैंने कहा था इंटेलिजेंस में कुछ प्रॉब्लम है ना? आपने कहा स्पेलिंग प्रॉब्लम है. मालूम क्या प्रॉब्लम है? इस आई जो है ना, दिस इज 2L एंड दिस इज आई एक्चुअली, है ना? इस कैपिटल आई को हमें छोटा आई बनाना है. हाउ डू आई डू दिस? कैपिटल आई को आई हैव टू ट्रांसफर इन टू स्मॉल आई. कैसे करूंगा मैं? बस बहुत सिंपल है, उसके ऊपर बिंदी लगा दीजिए तो स्मॉल आई बन जाता है. वेरी सिंपल. वो कैपिटल आई के ऊपर बिंदी लगा दीजिए, बिकम स्मॉल आई. जब हम एकदम ईगोइस्टिक होते ना तो बहुत कड़क होते हैं, लेकिन जब हम समझते कि मैं आत्मा हूं तो धीरे धीरे ईगो समाप्त हो जाती है और हमारे वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं. मेरी ये शुभ भावना कि आप जरूर दादी जी से मिलें. आप बहुत लकी हैं जो कल आप दादी जी प्रकाशमणि जी से भी मिलेंगे. यू सो लकी पीपल, राइट? आज या कल वो प्रोग्राम के हिसाब से आपको बताया जाएगा. लेकिन जस्ट दादी जी के वाइब्रेशंस को कैच करने की कोशिश करना, वर्षों की तपस्या, वर्षों का राज्यों का अभ्यास, और धीरे धीरे अगर हम भी ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी ये अचीव कर सकते हैं. लास्ट एक बात बताकर मैं एंड करना चाहूँगा. व्हाट इज द एक्शन प्लान? एक बार एक बीके जो है, एक बिजनेसमैन दोस्त के साथ टहलते टहलते यहाँ माउंट अबू में जा रहे थे. तो बिजनेसमैन, ये बीके भाई ने पूछा, भाई साहब कैसा लग रहा है? तो बिजनेसमैन दोस्त ने कहा, हाँ आप लोग इतनी आध्यात्मिकता की बातें करते, लेकिन एक कन्फ्यूजन है, इतना सब करके भी क्या मनुष्य सुख शांति प्राप्त कर सकता है क्या? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. तो बीके भाई एकदम शांत चित्त होकर बोला, कोई बात नहीं, चलो. थोड़ा आगे गए तो देखा कि एक है ना तालाब में बहुत बच्चे ना गंदे पानी से खेल रहे हैं और एकदम गंदे हो गए हैं. तो बीके भाई ने अपने बिजनेसमैन दोस्त से पूछा, अच्छा मुझे मालूम है आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और आप सोप मैन्युफैक्चर करते हो. बोला यस. तो बीके भाई ने पूछा, मैं ये पूछ सकता हूँ कि एक दिन में आप कितने सोप मैन्युफैक्चर करते हो? बोला 30,000 से 40,000. तो बीके भाई ने कहा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप इतने सोप बनाकर फायदा क्या, देखो बच्चे वैसे के वैसे गंदे पड़े हैं. तो बिजनेसमैन दोस्त को थोड़ा गुस्सा आया. उसने कहा, मैं सोप तो बनाता हूं लेकिन ये बच्चे सोप को यूज करना चाहिए ना, जिससे वह स्वच्छ बने. तो बीके भाई कहता है, उसी तरह भगवान हर दिन परमधाम से आकर ज्ञान रूपी सोप देता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको यूज करें या नहीं यूज करें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। बस एक लास्ट स्लाइड, सो व्हाट आर वी सपोज टू डू, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सो फ्रेंड्स लेट्स टेक टाइम सम टाइम सो फ्रेंड्स लेट्स टेक सम टाइम ऑफ अ बिजी शेड्यूल। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि आप लोग बहुत बिजी हैं, थोड़ा समय हम निकालें ताकि हम अपने इस व्हीकल को टुवर्ड्स स्पिरिचुअल पाथ लेकर जा सके। और ये विद्यालय आईक्यू ईक्यू और एसक्यू के पूरे कॉम्बिनेशन को मानता है। आईक्यू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ईक्यू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये विद्यालय से आकर हम एसक्यू भी सीख सकते हैं। सो आपका बहुत बहुत थैंक्स, ओम शांति, थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग। ओके, लास्ट हम एक गीत सुनेंगे और गीत सुनने के बाद हम एंड करेंगे, फिर आपका नेक्स्ट सेशन के लिए आपको डायरेक्शंस मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग।